दिन भर तारीख 21 सितंबर दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उड़ी में हुए चरमपंथी हमलों के सिलसिले में भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को किया तलब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप बोले,
विदेश सचिव ने उन्हें ये भी बताया, हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं में हमें अनेक चीजों को बरामद किया है, जिसमें शामिल है आतंकवादियों के शरीर से बरामद जीपीएस उपकरणों के कोऑर्डिनेट्स।
महाराष्ट्र के सोलापुर में लाखों की तादाद में मराठे निकले बिना किसी शोर शराबे के। दुनिया जहान में पड़ताल करेंगे कि पिछले 17 सालों से रूस में क्यों एक ही नेता पुतिन का दबदबा है कायम।
पुतिन के अलावा रूसियों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो देश को संभाल सके।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। अमेरिका के दो सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने के लिए कांग्रेस में एक बिल पेश किया है। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर और टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट के नाम से लाए गए इस बिल में कहा गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ भरोसे के काबिल है, बल्कि उसने बरसों से अमरीका के दुश्मनों को पनाह और मदद दी है। इधर उड़ी हमले के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे सक्रिय हैं और पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में आज मराठा समुदाय के लाखों लोगों का मूक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का ये जुलूस लगभग 12 किलोमीटर लंबा था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व 5 लड़कियां कर रही थीं, जिन्होंने अपनी मांगे जिलाधीश को सौंपी। इन लोगों की मुख्य मांग थी कि मराठा लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज हो और त्वरित जाँच हो। वहीं दूसरी मांग मराठा लोगों को अति पिछड़ा OBC वर्ग में शामिल कर नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने की है। ग्रीस में प्रशासन ने तुर्की के उन 3 सैनिकों की शरण देने की अर्जी खारिज कर दी है जो जुलाई के महीने में सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरी ग्रीस आ गए थे। ये 3 उन 8 सदस्यीय तुर्की सेना का हिस्सा थे जो अलेक्जोपोलिस में आ गए थे। ये सैनिक तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के एक दिन बाद यहाँ आए थे। एक ग्रीस अधिकारी का कहना है कि इन 3 सैनिकों ने इस फैसले के विरोध में अपील की है। तुर्की ने इन सैनिकों के प्रत्यर्पण की मांग की है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अगले साल से रेल बजट आम बजट का हिस्सा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 92 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो जाएगी। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 से अलग कर दिए गए थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा,
वक्त आ गया है कि रेल बजट का जो साइज है वो जनरल बजट के तुलना में बहुत कम है और जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना इसकी अब आवश्यकता नहीं है और जो सरकार का ओवरऑल फिस्कल डिसिप्लिन है और जो डेवलपमेंटल दिशा बजट की है, रेल बजट भी उसका एक अंग होना चाहिए। मंत्रिपरिषद ने इसलिए निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमेलगमेट होंगे।
ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली के शब्द। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अमानतुल्लाह खान को कथित यौन शोषण के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिस्र में करीब 600 अवैध प्रवासियों को ले जा रही नाव के पलटने से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी में चरमपंथी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के निशाने पर है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है और भारत की चिंताओं से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने अब से कुछ देर पहले कहा,
नियंत्रण रेखा अथवा उसके आसपास ऐसे 17 प्रयासों को विफल किया गया है जिसमें 31 आतंकवादियों का सफाया किया गया और इस तरह उनके आतंकवादी मंसूबों को विफल किया गया। विदेश सचिव ने उन्हें यह भी बताया कि इस समय भी नियंत्रण रेखा पर 2 मुठभेड़ें चल रही हैं। हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं में हमें अनेक चीजों को बरामद किया है, जिसमें शामिल है आतंकवादियों के शरीर से बरामद GPS उपकरणों के कोऑर्डिनेट्स, जिससे यह पता चलता है कि नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ किस स्थान से और किस समय की गई।
ये थे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप। भारत का कहना है कि उड़ी का हमला दर्शाता है कि पाकिस्तान में चरमपंथ का ढांचा अभी भी बना हुआ है। भारत ने चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान चरमपंथ को रोकने का अपना वायदा पूरा करे और चरमपंथ को बढ़ाने से बाज आए। इस बीच अमरीकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दो सांसदों ने पाकिस्तान को चरमपंथ को प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने संबंधी विधेयक को पेश किया है। सीधे कार्यक्रम में वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय को शामिल कर रहे हैं। ब्रजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो विधेयक पेश किया गया है, दो सांसदों ने पेश किया है, क्या किन्होंने पेश किया है और क्या है इस विधेयक के प्रावधान में?
देखिए, सभा में आतंकवाद पर एक प्रभावशाली सब कमेटी है, उसके अध्यक्ष है और दूसरे हैं जो सांसद डेना डोरा बैकर, और उनकी तरफ से लाया गया ये बिल है जिसमें कहा गया है कि नाम है पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर फॉर टेररिज्म नेशन एक्ट, और इसमें कहा गया है कि
ब्रजेश आपको हमारी आवाज आ रही होगी, आपकी आवाज बहुत
सुन पा रहा हूँ मैं आपको,
लेकिन आपकी आवाज यहाँ पर बहुत कट-कट के आ रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं आपसे संपर्क स्थापित करने की। इससे इसके बाद हिंदुस्तान की एक खबर का रुख करते हैं, ब्रजेश उपाध्याय के पास हम वापस लौटेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में लाखों की तादाद में मराठे सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अनोखी बात ये रही कि पूरे प्रदर्शन में किसी ने कुछ कहा नहीं, बिना किसी शोर शराबे के मूक प्रदर्शन। सभी प्रदर्शनकारी कई किलोमीटर की दूरी तय करके शहर के मुख्य मैदान पर इकट्ठे हुए। ये कैसा रहा प्रदर्शन, अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अमर शर्मा ने स्थानीय पत्रकार समर खड़क से संपर्क साधा और पूछा कि मौन प्रदर्शन के जरिए आखिरकार प्रदर्शनकारियों की मांग क्या थी।
रैलियां तो काफी हुई है और काफी जगहों पर इसी तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन शोलापुर की रैली मुझे लगता है आज तक जितनी भी रैलियां हुई है उसमें सबसे बड़ी हुई है और उसके कई आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो मॉडरेट फिगर है, जो पुलिस से फिगर मिल रही है, वो 10 लाख की फिगर है ऐसा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि एक तो शोलापुर में जो है ये एट्रोसिटी का जो मसला है, जो हर रैली में बोला जाता है कि उसका दुरुपयोग बहुत बढ़ रहा है और विशेष करके ओरल अब्यूज का उसमें जो सेक्शन है जिसमें अगर गाली गलौज होती है जाति के नाम पर तो उस पर मुकदमा दायर किया जाता है और उनको पुलिस कस्टडी होती है।
एट्रोसिटी से मतलब है आपका दलित उत्पीड़न?
दलित उत्पीड़न से एट्रोसिटी मतलब। तो ये कई मामले जो है इस तरह के दुरुपयोग के ये शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में काफी हुए हैं और शोलापुर सिटी जो है उसमें जो है दलितों की संख्या भी काफी पैमाने पर है और कई मसले ऐसे शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में सामने आए हैं। एक तो ये सबसे बड़ा मसला है, दूसरी बात यह है कि शोलापुर महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र का एक जिला है। जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि वेस्टर्न महाराष्ट्र ये गन्ने की खेती के लिए और शुगर फैक्ट्रीज के लिए काफी जाना जाता है, पहचाना जाता है। शोलापुर भी शुगर बेल्ट करके ही जाना जाता है, लेकिन जो पानी की किल्लत है वो सबसे ज्यादा वेस्टर्न महाराष्ट्र में इस डिस्ट्रिक्ट में है और उसके कारण खेती के कई सवाल सामने आए हैं और किसान जो है वो परेशान है। इन सारे जुलूसों के पीछे जो है वो किसानों के सवाल जो उग्र हो उठे हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद, वही सबसे अहम कारण इसके पीछे दिखता है। जो कोपरडी का मसला जिसके ऊपर से ये शुरुआत हुई और बाकी के जो सवाल है इनके कारण शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में गए 15-20 दिन से तैयारियां हो रही थी और उसको जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा था जनता से, तभी ये समझ में आ रहा था कि ये रैली जो है, ये जुलूस जो है, ये सबसे बड़ा होगा।
इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए?
ये सीधा तो सरकार के खिलाफ ही रहता है, लेकिन इसके कई परिणाम निकल सकते हैं आने वाले दिनों में। इसमें आज तो सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ है, लेकिन जो एस्टेब्लिश लीडरशिप है कई पार्टियों में, जो कुछ घरानों की सत्ता मराठों के कारण मराठा जाति का नाम लेके मराठा समाज के कुछ एस्टेब्लिश लीडर ने महाराष्ट्र में कई साल जो सत्ता हाथ में रखी है, उनके घराने भी इसमें हिल सकते हैं, ऐसा आज की तारीख में तो दिखाई दे रहा है।
स्थानीय पत्रकार समर खड़स बता रहे थे कि किस तरह से महाराष्ट्र के सोलापुर में लाखों की तादाद में मराठे सड़कों पर निकले, उन्होंने मूक प्रदर्शन किया और इसके जरिए उन्होंने अपनी मांगों को उठाया है। कार्यक्रम में अब हम अपनी मुख्य खबर पर फिर से वापस लौट रहे हैं और चल रहे हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास वाशिंगटन। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जैसा कि आपको बताया था कि अमरीकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दो सांसदों ने पाकिस्तान को चरमपंथ को प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने संबंधी विधेयक का प्रस्ताव किया है। ब्रजेश, आपसे बात हम कर रहे थे और बात पूरी नहीं हो पाई थी, हमने आपसे ये पूछा था ये दो सांसद कौन हैं और विधेयक के प्रावधान क्या हैं?
जी हाँ, एक तो है यहाँ पर जो काफी प्रभावशाली सब कमेटी है प्रतिनिधि सभा में आतंकवाद पर, उसके अध्यक्ष टेड पोक, और दूसरे हैं कैलिफोर्निया के सांसद डेना रोरा बैकर, और उन्होंने पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर फॉर टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट के नाम से एक बिल वो लेकर आए हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ भरोसे के काबिल नहीं है बल्कि उसने बरसों से अमेरिका के दुश्मनों को पनाह और मदद दी है। और टेड पो ने कहा है कि ओसामा बिन लादेन को पनाह, हक्कानी नेटवर्क के साथ रिश्ते और इनके अलावा कई सबूत हैं जिनसे साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग में किसके साथ है, जाहिर है अमरीका के साथ नहीं है। तो ये एक बड़ा झटका है, और साथ ही टेड पो का ये कहना था कि वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान को उसकी धोखाधड़ी के लिए पैसा देना बंद करें और उसे वो दर्जा दें जो वो जिसका वो हकदार है, यानी आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश। तो काफी सख्त अल्फाज के इस्तेमाल किए गए हैं।
ये तो सिर्फ दो सांसदों की बात है, इस विधेयक के आगे जाने की क्या संभावना है और अहमियत क्या है इस विधेयक?
देखें, अहमियत इस मायने में है कि जिस वक्त नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे हैं आज, उसी दिन ये एक तो सामने लाया गया है। दूसरी बात, ये दोनों सांसद पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। 2011 में इन्होंने ओसामा बिन लादेन के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की बात की थी, बलूचिस्तान में ये रायशुमारी या जन्म संग्रह की बात करते रहे हैं। लेकिन मेरी बात हुई अब से कुछ देर पहले जो व्हाइट हाउस में पाकिस्तान मामलों के निदेशक रह चुकी हैं शमाला चौधरी, और उन्होंने कहा कि दोनों देश अभी उस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं जहां वो बिल्कुल ही एक दूसरे से रिश्ता तोड़ लें, लेकिन बदला ये है, उनका कहना था शमाला चौधरी का, कि अब अफगानिस्तान में अमेरिका की जो पाकिस्तान पर निर्भरता है वो काफी कम हो गई है और प्रशासन भी अब इस रिश्ते को काफी बारीकी से देख रहा है। उनका ये कहना था कि इस बिल के आगे जाने के आसार तो नहीं है, लेकिन उसकी इसकी वजह से पाकिस्तान को मिलने वाली दूसरी मदद पर और असर हो सकता है, और इस पर 90 दिनों के अंदर राष्ट्रपति ओबामा को एक रिपोर्ट देनी होगी कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में का साथ दिया है या नहीं, और उसके 30 दिनों के बाद विदेश मंत्री जॉन केरी को एक रिपोर्ट देनी होगी कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश करार दिया जाए, या फिर विस्तार से बताना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता।
ब्रजेश, बहुत संक्षेप में, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाषण होना है, संबोधन होना है, किस बात पर नजर टिकेगी उनकी, हम सबकी?
देखिए, तकरीबन ढाई घंटे के बाद वो बोलने वाले हैं और उनके साथ जो आए अधिकारी हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि सबसे अहम मुद्दा कश्मीर होगा। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एजाज चौधरी, उन्होंने पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मकसद से आए हैं वो, और वो है कश्मीर में भारतीय फौज की जो कारकर्दगी है उसको दुनिया के सामने लाने की। और उन्होंने नाम दिया कि नवाज शरीफ इस बार जिस मिशन पर आए हैं उसका नाम है मिशन कश्मीर, और साथ ही वो अमेरिका से भी इस मामले में मुदाखलत या इसमें मध्यस्थता करने की मांग करते रहेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय आपका कार्यक्रम में सीधे शामिल होने के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 21 साल की एक छात्रा की हत्या के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि एक 34 साल के एक व्यक्ति ने एक 21 साल की लड़की पर चाकू से करीब 20 बार वार किए। करुणा की मौके पर ही मौत हो गई। आज उनके परिवार वालों से मिलने के लिए बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य मेरे सामने मौजूद हैं। आप उनके घर गई थी, क्या बताया उन्होंने और पुलिस का क्या कहना है?
मोहनलाल जी, बहुत ही भयानक था वो सीसीटीवी वीडियो, अगर आपने भी देखा हो,
बहुत ही मतलब उसको देख आप नहीं सकते।
बिल्कुल। और जब मैं उनके घर गई और उनकी माँ से मिली तो मैंने देखा कि शायद रो रो के उनकी आंखें पथरा गई थी, पर वो जितनी दुखी थी उतनी ही गुस्से में थी। बल्कि वो ही नहीं, उनके आस पड़ोस की सैकड़ों औरतें उनके साथ जमा थी और उन सबका एक सुर में यही कहना था कि पुलिस का रवैया इस केस में अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इस आदमी की छेड़छाड़ की शिकायत उन्होंने पुलिस के पास की थी लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उनका माँ का यह आरोप था कि पुलिस ने समझौता करने की सलाह दी, जिसके बाद वो लोग समझौता करने के लिए उस आदमी के पिता के पास गए भी और आदमी के पिता ने यह आश्वासन दिया कि वो आगे छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने पुलिस की कंप्लेंट अपनी बंद कर दी। लेकिन 3-4 महीने पहले जब ये हुआ उसके बाद अब उस आदमी ने इस तरह का कदम उठाया। हमने ये सभी शिकायतें और ये सभी आरोप पुलिस के सामने रखे, पुलिस ने इनसे इनकार किया। पुलिस ने कहा कि हमने समझौते की बात कभी नहीं की थी और अगर इस तरह से पीछा करने या छेड़छाड़ का मामला हमारे सामने आता है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, और इसमें भी हमने बयान लेने की कोशिश की थी लेकिन लड़की के परिवार वालों ने कंप्लेंट बंद कर दी। हमने लड़के के परिवार वालों से भी मुलाकात की, उन्होंने माना कि लड़की के परिवार वाले उनके पास ये सारी जानकारी लेके आए थे जिससे वो एकदम सकते में आ गए कि उनका बेटा छेड़छाड़ कर रहा है या पीछा कर रहा है एक लड़की का, उस पर दबाव बना रहा है शादी का। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने लड़के को हिदायत दे दी थी और इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है।
लेकिन मतलब अभी उन्होंने इस बात को नकार दिया कि मुख्य वजह क्या है, इसकी कोई जानकारी नहीं।
नहीं, उन्होंने ये माना कि लड़की की छेड़छाड़ की जा रही थी, लड़की का पीछा किया जा रहा था, पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे पैसे से जुड़ी कोई बात भी हो सकती है। तो एकदम सारे तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं, पुलिस भी अभी तफ्तीश कर रही है। 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया है उस लड़के को, लेकिन वो उसका पीछा कर रहा था ये बात दोनों परिवार मानते हैं और पुलिस भी मानती है। और वहाँ पे दिल्ली महिला आयोग की स्वाति मालेवाल भी पहुंची थी और बल्कि उन्होंने कहा कि शायद परेशानी यही है कि हमारे यहाँ छेड़छाड़ की या पीछा करने की स्टॉकिंग की जो शिकायतें हैं, जो अब हमारे 2013 में कानून के कड़ा होने के बाद अब उनके लिए 3 साल की सजा तक दी गई है, ये सब होने के बावजूद उनको शायद बहुत हल्के में लिया जाता है
और लोग शायद इतने गंभीर दिखते नहीं है, ये छेड़छाड़ की घटनाओं को लोग ऐसे ही नजरअंदाज कर देते हैं।
बिल्कुल, उनका कहना था कि पुलिस को भी अपना रवैया बदलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आर्य इस पूरी जानकारी के लिए। और यहीं पर दिल्ली से जुड़ी एक खबर बता दूं कि आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल लगातार गहराते जा रहे हैं। आप पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री अमानतुल्ला खान को कथित यौन शोषण के एक मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके छोटे भाई की पत्नी ने पुलिस थाने में कथित यौन शोषण के बारे में शिकायत दर्ज की थी। एक अन्य मामले में पुलिस ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ महिला आयोग में कथित अनियमितताओं के बारे में एक FIR दर्ज की है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। आम आदमी पार्टी में क्या उठापटक चल रही है, अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र कार्यक्रम में हम पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको सुनवाएंगे।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
रूस में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया। पिछले 17 सालों से देश में एक ही नेता का दबदबा है और वो चाहे जैसे नियम कानून और मर्यादाओं की बाहें मरोड़कर अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। देश के ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और लोकतंत्र की मजबूत परंपरा भी कायम है, तो आखिरकार क्या वजह है कि पुतिन हर चुनाव के साथ मजबूत होते जा रहे हैं। इस हफ्ते दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
शीत युद्ध खत्म होने के करीब दशक भर बाद सोवियत संघ टूटने के साथ ही ये मान लिया गया कि रूस अब उठ नहीं पाएगा और अमेरिका दुनिया की इकलौती महाशक्ति है। पिछले 1.5 दशक के शासन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस धारणा को तोड़ने में कुछ सफलता जरूर पाई है। रूस में 17 साल से उनके नाम का सिक्का चल रहा है और इस बार के संसदीय चुनाव ने भी पुष्टि कर दी है कि ये दौर अभी जारी रहेगा। संसद के निचले सदन ड्यूमा की 75% से ज्यादा सीटों पर उनके समर्थन वाली यूनाइटेड रशिया ने जीत दर्ज की है और सत्ता पर उनकी पकड़ अब और मजबूत है। जीत का डंका बजने के साथ ही पुतिन ने कहा,
यूनाइटेड रशिया पार्टी और निश्चित रूप से दूसरी पार्टियों के लिए भी जिसका महत्व है वो है नतीजा। नतीजे अच्छे हैं और आप जानते हैं कि मैंने इनके बारे में क्या सोचा है। हम जानते हैं कि लोगों की जिंदगी आसान नहीं है, कई समस्याएं हैं, कई अनसुलझे मुद्दे हैं, लेकिन इतने पर भी परिणाम तो परिणाम ही हैं। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन पूरे नतीजों को देखें तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। पार्टी जीत गई है।
ऐसा नहीं कि इन चुनावों पर सवाल नहीं उठ रहे। वोट देने वाले लोगों की तादाद भी अब तक के इतिहास में सबसे कम रही है। गड़बड़ियों की शिकायत के बाद कई जगहों पर दोबारा वोटिंग के भी आदेश दिए गए, लेकिन इतने भर से पुतिन को मिले समर्थन का मुकाबला नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड रशिया के विरोधियों को मिला वोट इतना कम है कि उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। कई पार्टियां तो 5% वोट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी। आखिर पुतिन को रूस में इतनी पूछ मिलने की क्या वजह है? मॉस्को की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अनिल जनविजय।
देखिए, ऐसा है, पुतिन को बहुत बड़ा समर्थन इस देश में हासिल है, और पुतिन के अलावा रूसियों को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो देश को संभाल सके। येल्सिन ने असल में देश का बहुत बेड़ा गर्क किया था, लोकतंत्र के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया था। पुतिन ने आकर उस अर्थव्यवस्था को संभाला, तो इसलिए पुतिन में लोगों का विश्वास बहुत गहरा है। येल्सिन के समय में अच्छे अच्छे पदों पर जो लोग थे उन लोगों को टैक्सी चलाने पर और मजदूरी करने पर बाध्य होना पड़ा था। पायलट जो है वो दिन में हवाई जहाज चलाता था और रात को या छुट्टी वाले दिन डिब्बे उठाता था, टैक्सी चलाता था। अभी कम से कम ये है कि लोग अपना जीवन तो जी रहे हैं।
पुतिन ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर तरह के दांवपेच आजमाए हैं। राष्ट्रपति पद की निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद अपने जूनियर को देश का राष्ट्रपति बनाकर खुद प्रधानमंत्री और पार्टी के प्रमुख बन गए। इस दौरान देश के अहम फैसले राष्ट्रपति मेदवेदेव के नाम पर वही लेते रहे, कानून में बदलाव कराया और 4 साल बाद फिर राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल कर ली। देश में उनका मुखालफत करने वाले संगठनों, पत्रकारों और दूसरे लोगों को पाबंदी से लेकर कड़ी सजा तक झेलनी पड़ी है और मानवाधिकारों के उल्लंघन में रूस का नाम पुरजोर लिया जाता है। पुतिन रूस की कुख्यात खुफिया एजेंसी KGB के लेफ्टिनेंट रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में उनकी कामयाबी रूसी जनता के जहन में है। सत्ता के तंत्र को अपने हक में इस्तेमाल करने के तौर तरीके उन्हें बखूबी आते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रशियन स्टडीज की प्रोफेसर अनुराधा शिनॉय।
वो KGB में थे तो वो अंदरूनी सिस्टम जो है, अंदरूनी स्ट्रक्चर को जानते हैं और उनके तौर तरीके भी वैसे ही हैं। जो लॉयलिस्ट हैं, उनके दरबारी हैं, उनके साथ वो काम करते हैं, क्योंकि रूस में जो बहुत सारे मर्द हैं वो बहुत अल्कोहलिक हैं और विमेन पे काफी ऑपरेशन है, तो रूस की जो विमेन है वो पुतिन को बहुत एडमायर करती हैं, क्योंकि पुतिन दिखाता है कि वो बिल्कुल शराब नहीं पीता, स्ट्रांग है, उसकी सीधी बात करता है, अमेरिका को क्रिटिसाइज करने को वो तैयार है, तो उसकी सपोर्ट बेस है। हाँ, पैनामा पेपर्स में उसका नाम आया था, लेकिन रूसियों को ये कहना है कि इन पिछले 15 सालों में उनकी उन्नति हुई है पर्सनल निजी लेवल पे। यूनिवर्सिटीज ठीक से चल रही हैं, स्ट्रक्चर्स बने हैं, 100% उनको फ्री हेल्थ मिलती है, तो इन चीजों में जब वो काफी खुश हैं तो वो कहते हैं ठीक है, अगर करप्शन है लेकिन हमें जो डिलीवरी है वो ठीक मिल रही है।
पुतिन के पहले रूस से आने वाली खबरों में चेचेनिया के जंग की दास्तान, सोवियत रूस के टुकड़ों की आपसी रंजिश और रूसी अर्थव्यवस्था की खराब हालत का ही बोलबाला था। लेकिन क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर रूस में मिलाना, सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देना और सीधे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ धावा बोलकर पुतिन ने दुनिया को एहसास दिलाया है कि सोवियत संघ भले ही खत्म हो गया हो, रूस अभी बाकी है। हाल ही में रूसी सेना चीन के साथ युद्धाभ्यास करने दक्षिण चीन सागर जा पहुंची। इन सब कदमों ने राष्ट्रपति पुतिन को रूस और रूस के बाहर भी एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया है। पांच सौ से ज्यादा वर्षों से चला रहा रूस का जंगी इतिहास लोगों में देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ करता है और पुतिन इन सब का इस्तेमाल अपने हक में करते हैं। अनिल जनविजय।
रूस शुरू शुरू से ही पिछले 400-500 सालों से लड़ाइयां लड़ता रहा है और रूस में बहुत ज्यादा लोग मारे जाते रहे हैं। खासकर यूरोप के देश जो है वो रूस के विरुद्ध रहे हैं हमेशा। प्रथम विश्व युद्ध भी रूस के विरुद्ध लड़ा गया था, फिर दूसरा विश्व युद्ध भी रूस के विरुद्ध लड़ा गया। तो एक तरह की राष्ट्रवादी भावना जो है वो रूस में बहुत गहरी बैठी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस चीज को मानते हैं। एक तबका ऐसा भी है जो इसका विरोध करता है, इसके पक्ष में नहीं है और जो राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन वो तबका जो है वो कमजोर है, वो उन लोगों से कमजोर है कि वो राष्ट्रवादी है। तो ये राष्ट्रवादी भावना जो है यही वो भावना है जिसको पुतिन समझते हैं और इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और जीत जाते हैं।
सिर्फ जंग के सहारे ही नहीं, कूटनीति और अर्थव्यवस्था के रास्ते भी रूस दुनिया के देशों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है। वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ हथियारों का सौदा करने की कोशिश में है। एक साथ चीन और जापान में दोस्ती की बिसात पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं और सीरिया में तुर्की के हाथों अपना लड़ाकू विमान गंवाने के बाद भी तनाव को हावी नहीं होने दिया गया। आम लोगों के साथ कारोबारियों और पूंजीपतियों का भरोसा उन्हें आगे बढ़ने में मददगार साबित हुआ है और पुतिन के विरोधियों के पास उनके जोड़ का नेता फिलहाल नहीं है।
न सिर्फ नेता नहीं है बल्कि वो नई राजनीतिक स्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पा रही हैं। वो राजनीतिक पार्टियां, उनके पास एक तो धन भी नहीं है और बिना पैसे के आपको मालूम है पॉलिटिक्स कहीं भी नहीं होती है सारी दुनिया में। जितने भी यहाँ के धनाढ्य व्यक्ति हैं वो सब पुतिन के पक्ष में हैं, इसलिए पुतिन के पास, पुतिन की पार्टी के पास बहुत पैसा है और पैसा ही नहीं है, देश के सारे सोर्सेस के ऊपर भी इनका कब्जा है। बाकी पार्टियों का कोई कब्जा नहीं है, किसी उनको कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो जीत भी नहीं पा रहे हैं और इलेक्शन में प्रचार करने के लिए, अपना पार्टी चलाने के लिए भी जो खर्च चाहिए वो भी अगर सरकार देती है तो चलता है, नहीं तो नहीं चलता है।
इन सब के बावजूद रूस के पास अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तेल की गिरती कीमतें उसका सिरदर्द बढ़ा रही हैं, बाकी यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों ने देश की हालत खस्ता कर दी है। भारी महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था और गिरती साख, पुतिन के सामने चुनौतियां बहुत हैं और वो ये जानते हैं कि इसे नहीं संभाल पाए तो न ताकत काम आएगी न कूटनीति। रूस को अलग थलग करने की तमाम कोशिशों के बावजूद अगर रूस खड़ा हो रहा है तो उसके पीछे भारत और चीन की भी बड़ी भूमिका है।
भारत को अपने तेल और गैस के भंडार बेच रहे हैं और भारत ने 2-3 भंडार खरीदे भी हैं। भारत और चीन की वजह से ही अभी तक ये लोग बचे हुए हैं। भारत और चीन बड़ी रकमें इनकी अर्थव्यवस्था में निवेश कर रहे हैं।
यही दोनों देश हैं जो अब भी रूस के साथ कारोबारी और सैन्य संबंध बनाए हुए हैं। दो साल बाद रूस में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। पुतिन कितनी दूर तक जाएंगे ये इस बात से भी तय होगा कि वो अपने साथ आने वाले देशों में और कितने नाम जोड़ पाते हैं। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहां आप सुन रहे थे और इस बात की हम पड़ताल कर रहे थे कि पिछले 17 सालों से रूस में क्यों एक ही नेता पुतिन का दबदबा कायम है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सवेरे यानी कि विश्व भारती सभा में किया जाएगा। कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा ले, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के उड़ी इलाके में हुए हमले के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे सक्रिय हैं और पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया गया है। अमेरिका के 2 सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित करने के लिए कांग्रेस में एक बिल पेश किया है। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर में आज मराठा समुदाय के लाखों लोगों का मूक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का यह जुलूस लगभग 12 किलोमीटर लंबा था। ग्रीस में प्रशासन ने तुर्की के उन 3 सैनिकों की शरण देने की अर्जी खारिज कर दी है जो जुलाई के महीने में सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरी ग्रीस आ गए थे। अगले साल से रेल बजट आम बजट का हिस्सा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिस्र में करीब 600 अवैध प्रवासियों को ले जा रही नाव के पलटने से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हैं। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।